أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پڑھنا. Respected Hujjat al-Islam Sheikh Al-Attar, we are going to discuss again today related to the rewards of the Day of Judgment. And I'm very thankful to Sheikh Attar, and it is honor for me that he is also present here. He mentioned something in his brief talk, which already we were discussing for the last 2 or 3 days. And then he recited very beautiful hadith as well. Man zara al-Husayn arifan bihaqqihi. So we are already talking about the issue of sawab, the importance of understanding the essence of sawab. So I just want to add something, and then I will continue my speech today. That when we, so Sheikh is emphasizing that how much it is important for us that in Arba'een we go for ziyarat of Imam Hussain alayhi salam. But we have already talked, and again for our youngsters, for our youth, I just want to further emphasize that we have 2 types of journeys. One is physical journey and second is spiritual journey. So when we are going for ziyarat, so according to my experience, most of us, we are just having physical journey, but spiritual journey is very, very important for us. That when we are going for ziyarat, and the hadith he recited that man zara al-Husayn arifan bihaqqihi, so we just take, and then he will be given the reward, maybe wajaba lahul jannah and others. So we are just focusing only one part of this hadith, which is man zara al-Husayn, or the one who is weeping and crying for Imam Hussain alayhi salam, the jannat will be obligatory and wajib for him. But the very important part of this hadith is arifan bihaqqihi. This should be with awareness. This should be with irfan. When we say arifan, this is not just just knowledge, but irfan is also related to our wisdom, our intellectual level, and our iman and our amal. So all 3 aspects are there when we say arifan bihaqqihi. And what is the haqq of Imam Hussain alayhi salam? So I don't have much time to discuss about that, but it is very important to know that when we say that we are going to ziyarat of Imam Hussain alayhi salam and arifan bihaqqihi, we must be well aware of the rights of Imam Hussain alayhi salam on us. So what are these rights? So for example, if we are going for ziyarat, we are participating in the majalis, and we don't take any interest in the objectives of Imam Hussain alayhi salam, the qualities of Imam Hussain alayhi salam, the moral and ethical principles introduced and mentioned by Imam Hussain alayhi salam. So it is very important for us that when we are going for ziyarat, so we are paying attention to ourselves, self-purification and self-development as well. So last time what we discussed, this was about when we are talking about sawab. So sawab is, normally we think that sawab is something different from our amal. So we see that once we have done something good, for example, we are offering prayer, we are going for ziyarah, we are coming for dua-e-kumail, and then our focus is on sawab. So we will be given sawab. When our focus is on sawab, and then we see in the light of this aspect that I have already discussed, then we are not paying attention to the importance of our amal. So we are not going to pay attention to the effect of amal on our soul and our heart. So it is extremely important for us to really pay attention to the tasir and effect of our amal. For example, even for this world, if we are praying, we should know that morally and ethically, whether our prayer is preventing us from wrongdoings or not, it is extremely important, because we have lot of ahkam and commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. And there are two aspects of commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. One aspect is jurisprudential aspect, that how you need to pray, how you need to fast, you go and see Tawzi'ul Masail, and there are rules and regulations. But one aspect is the wisdom behind the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, the philosophy behind the ahkam of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, Allah says the moral and ethical aspects are there. Why prayer is obligatory, why fasting is obligatory, why it is very important and highly recommended that we should go for ziyarat of Imam Hussain al-Islam for Hajj, for Mashhad. So why it is so? So Quran is also mentioning this one. In riwayat we see, so the philosophy and the hikmat, and in other words, ultimate objective of objectives of ahkam. Ultimate objective, you can say, for example, if we are praying, so one important objective is it must be able to prevent us from wrongdoing. And about fasting, Allah subhanahu wa ta'ala says that la'allakum tattaqoon. So if we are fasting but we are not becoming righteous person, so similarly these aspects are very important. And then we also discussed that the relation between this world and the day, the hereafter and the day of judgment, it is extremely important to know these are not two different segments. These are related to each other, and akhirat will be the batin of this world, the batin of our amal. Quran says this will be the yawmuz zuhur, the day of manifestation. So one of the names of Qiyamah is everything will be manifested in the day of judgment. So there is a lot of difference between, for example, if you are doing something and Allah has already prepared something as a reward and He is going to give us this reward, this is something else. But Quran says that whatever we are doing in the name of God or religion, so there will be the manifestation, the batin of the amal will be manifested in the day of judgment. So this is the basic philosophy, and this is why Allah subhanahu wa ta'ala says that فَكَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ. So we will remove the veil from your eyes in the day of judgment. So this is the issue of removing the veil. For example, facts are there, realities are there, truth is there, but we are not able to see. Not because haq is complicated, not because truth is difficult for us to understand. You see what Quran is saying? Quran is saying that truth is there, reality is there, but you have basically you are knitting the veil for yourself. Because of this veil, because of this naqab, because of this hijab, you are not able to see the truth. So this is very important for us, that we in this world, we should understand that truth is there, and how we can become insightful person, how we can have basirat, how we can be able to open the eyes of our heart. When Allah subhanahu wa ta'ala says, man kana fi hazi a'ma, the one who is blind in this world, he will be blind in the day of judgment as well. And this person asking that, oh God, I was not blind in the day, in this world. So Allah will say, no, you were blind. Your physical eyes are not working in the day of judgment. Because in this world, physical eyes are always there. But with physical eyes, we are not able to see truth all the time. Because the eyes of our heart is very important. If we have hikmat, if we have basirat, if we have awareness, if we have marifat, if eyes of our heart is open, then we can see what is right and what is wrong, what is truth and what is false. So this is what Quran is mentioning here, and Allah subhanahu wa ta'ala says that my ayat were there, my signs were there, and you were not able to see, and then you were neglectful of, you were not remembering me. The one who is not remembering Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says that I will make his life miserable. So how much this ayat is important? Man a'raza an zikri, the one who is turning his face from my remembrance, then I will put him in difficulties and problems. So these all aspects are important that we have discussed. Today I just want to continue whatever I was discussing last time. We have another issue that we need to understand. Bunyadi taur par hamari jo overall topic tha wo ye tha ke hum aakhirat ke hawale se, day of judgment ke hawale se hum jo hai wo baat kare, hum guftugu kare, aur Quran Majeed mein badi subtle aur delicate ayat maujood hain aur badi depth hai in ayat ke andar jo aakhirat ke bare mein hai, jo alam e barzakh ke bare mein hai, aur is duniya aur aakhirat ke darmiyan jo relation hai usko samajhne ki zarurat hai. Main bar bar isiliye maine apni majalis mein maine is baat ki taraf ishara kiya ke hum log jo hain wo albatta ye mera experience hai, ho sakta hai aapka opinion mukhtalif ho, lekin mera experience ye batata hai ke hum Quran se bahut dur ho chuke hain. Quran hamari zindagi mein nahi hai, Quran ko apni zindagi mein wapas lane ki zarurat hai, Quran ke zariye se apne masail ko hal karne ki zarurat hai, Quran se manus hone ki zarurat hai. Kyun Quran ke bare mein kaha ke huwa shafiun mushaffa, aap dekhiye qiyamah ke din jo shafaat karne wale honge, baaz se Allah taala wajah bhi puchega, daleel bhi puchega ke kis liye falan shakhs ki tum shafaat kar rahe ho. Jaise aap is duniya mein kabhi kisi ki safarish karte hain to dusra aapse puchta hai ke iski qualities kya hain, iski education kya hai, isi tarah baaz ki shafaat ke bare mein Allah taala sawal karega. Lekin Quran ke bare mein hai shafiun mushaffa, jab Quran ne ek dafa kisi ki shafaat kar di to Allah Quran se nahi puchega ke tum shafaat kyon kar rahe ho. Salawat par dijiye ek martaba. To ye bahut important hai ke hum Quran ko bar bar, main isko explain karna chahta hu ke Quran ko apni zindagi mein, apni speeches mein central haisiyat dene ki zarurat hai. Quran hamari zindagi se, hamari speeches se absent nahi hona chahiye. Aap dekhen hame bahut kuch Christian world se seekhna chahiye, Christianity se seekhna chahiye. Hamare zehen mein ye bithaya gaya hai ke sara kuch hamare hi paas hai aur dusron ke paas kuch offer karne ke liye nahi. Sare duniya ke jitne bhi aasmani maqatim hain, jab aap interfaith gathering karte hain, jab aap unke saath baithte hain, bahut si commonalities hain, bahut si common grounds hain, bahut si mushtarakat hain, to wo bhi hame bahut kuch jo hai wo offer karte hain. Main kabhi kabhi ye dekhta hu, gaur karta hu, bahut zyada mujhe churches mein speeches karne ka mauka milta hai, main dekhta hu ke un wo na bible centric hote hain, बाइबल उनका सेंट्रल फिगर होती है उनकी हर चीज़ के अंदर. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम क्यों ऐसे नहीं होते, कभी कभी ये महसूस होता है कि हमारा कुरान क्यों नहीं सेंट्रल हैसियत रखता. हत्ता हमारे उलमा को कुरान की आयात का भी नहीं पता होता, कुरान को हमने एक दफ़ा पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं होता. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, तो बहुत कुछ हमें, आज हम जिस सोसाइटी में हैं, ये हम कोई पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए हैं, कोई इंडिया में नहीं बैठे हुए हैं, किसी और जगह नहीं बैठे हैं, ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और मल्टी फेथ और मल्टी कल्चरल सोसाइटी के कुछ तकाजे हैं. मैं आज के मजलिस में शायद उसकी तरफ इशारा करूं कि यौम क़यामत और आखिरत की बात कर रहे हैं, आखिरत में जब हमें नामे आमाल दिया जाएगा तो तीन किस्म का वो नामे आमाल होगा. अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता. एक नामे आमाल हमारी इंडिविजुअल हैसियत के एतबार से होगा कि हमने अपनी इनफरादी हैसियत में, हमने अपनी इंडिविजुअल हैसियत में, हमने जो कुछ भी आमाल अंजाम दिए उस नामे आमाल की सूरत में हमें बताया जाएगा कि हमारे कौन से आमाल अच्छे थे اور کون سے اعمال ہمارے برے تھے، لیکن ایک نام اعمال ہمارا من حیث القوم ہوگا. بہت توجہ کیجئے گا، ایک نام اعمال جو ہے ایک امت کی حیثیت سے ہوگا، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہوگا. یعنی آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری وہ ہے جو انڈیویجول حیثیت میں مجھ سے پوچھا جائے گا، ایک اس حیثیت سے کہ آپ کمیونٹی کے ایک فرد ہیں، آپ اس کمیونٹی کا حصہ ہیں. لہذا اس حیثیت سے ہماری بہت سی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ آیا ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وہ ہماری انڈیویجول ذمہ داری نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیں جو ہم چیزیں ان لوگوں سے اب بات نکلی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کور کرتا چلا جاؤں، کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ دوسرے مذاہب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں ان کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو ہم بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جب میں جاتا ہوں تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک کرسچن لیڈی سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے چرچ کے اندر، تو جو انہوں نے جواب دیا اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا اور مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد سے میری پرسیپشن پوری تبدیل ہو گئی اور میں نے اپنی کمیونٹی میں اس کو لانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ میں گریٹنگ انچارج ہوں. گریٹنگ انچارج ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور ہماری کمیونٹیز میں کیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ایلین فیل کرتے ہیں. جو نئے لوگ آتے ہیں وہ آ کے ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم جب کمیونٹی میں آتے ہیں تو کوئی ہم سے بات نہیں کرتا. تو ہماری کمیونٹی کا ویلکمنگ ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کو مسکرا کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے بات کریں، اس کا حال احوال پوچھیں. نہ یہ کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم آئیں بیٹھیں مجلس سنیں اور خاموشی سے ہم چلے جائیں. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. دیکھیں اچھا اخلاق، اچھا اخلاق آپ کے فیس پر اسمائل، آپ خوشی سے دوسرے سے ملیں. نہ یہ کہ انسان جو ہے، میں حیران ہوتا ہوں خود اپنی وینکوور میں ان مراکز کے اندر جو بڑے میچور ہیں جہاں ہم نے بہت کام کیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایوائڈ کرتے ہیں فیس کرنے سے، کہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے. آپ کو حیرانی ہوتی ہے اس کے اوپر. اور پھر جن سینٹرز کے اندر عرب بھی آتے ہیں، پرشین سپیکنگ بھی آتے ہیں، جہاں انگلش ہمارا سینٹر ہے، وہاں پر اپنے اپنے گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنی خطرناک چیز ہے کہ وہاں پر ایک طرف چار عرب بیٹھے ہیں، دوسری طرف چار ایرانی بیٹھے ہیں، ایک طرف پانچ خوجے بیٹھے ہیں اور کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا. یہ کس قسم کی کمیونٹی ہے جو ہم یہاں پر بنا رہے ہیں؟ اس ویلکمنگ کمیونٹی کو ہونا، ہر ایک سے محبت کرنا، ہر ایک کی مشکلات کو سننا، سمجھنا. اور دلچسپی، صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. بہت سی پرابلم ہمارے ہاں ہیں، ان پرابلمز سے ایک ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے لسنر نہیں ہیں. ہم ٹاکیٹو تو بہت ہیں. ہم جو ہے، ایک وجہ جو ہماری یہ ہے کہ یہ کہ مثلا دوسرے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں دلچسپی صرف اپنے آپ سے، ہم صرف اپنے آپ پر فوکس کرتے ہیں. ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، وہ مومن جو ہے وہ حسن المعونہ ہوتا ہے. یعنی وہ صرف اپنے اوپر توجہ نہیں کرتا. سیلف سینٹرڈنیس جو ہے نا، یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. کہ آپ دیکھیں جو لسننگ سکل ہے، یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے دوست، اپنے کمیونٹی ممبر، اگر وہ آپ سے بات کر رہا ہے تو ہماری خاص طور پر یہ جو پاکستان اور اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے نا، اس کی یہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ ہم بہت جلدی ایک تو انٹرپٹ کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں صرف دلچسپی ہوتی ہے کہ اپنی کہانی دوسرے کو بتائیں، اپنی داستان جو ہے وہ دوسرے کو بتائیں، لیکن دوسرے کی نہ سنیں ہم بالکل. اور اگر دوسرا بول بھی رہا ہے تو صرف ہم اس حد تک کہ اس کی بات کب ختم ہو تاکہ میں اپنی بات کر سکوں. لہٰذا اچھا لسنر ہونا سیکھنا چاہیے. مولا کائنات ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ماضی میں میرا ایک دوست تھا. سنیے گا مولا کائنات کا فرماتے ہیں، ماضی میں میرا ایک دوست تھا کہ جس کو بولنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی تھی، جس کو بولنے سے زیادہ سکوت میں دلچسپی تھی. اور اگر کوئی، اب آگے سنیے گا، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بولنے میں ان سے برتری لے جائے، لیکن بہت زیادہ بولنے والا ہوں، تو سکوت میں کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا، خاموش رہنے میں کوئی اس سے زیادہ برتری نہیں لے جا سکتا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی اخلاقی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے اچھی طرح امپروو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے ممبر سے इस तरह से तरबियत हो भी और उसको बयान भी किया जाए। सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा। कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर मैं उस आयत के ऊपर आऊँगा जो बड़ी इम्पॉर्टेंट आयत है, कि जो हमारे यहाँ जो है वो आयत इस लिहाज से कि मैंने सरनामा कलाम करार दी है, आखिरत से उसका ताल्लुक है, लेकिन ये आयत जो गुज़श्ता टॉपिक से भी रिलेटेड है और मैंने कल बयान नहीं कर सका था बास चीज़ें। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द फ़तन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ी सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अब देखें कि अल्लाह ताला ये कहता है कि हमने तुमसे पहले भी लोगों को आज़माया है, और अल्लाह ताला जो है फॉर श्योर जो है ही विल नो दैट हु इज़ ट्रूथफुल एंड हु इज़ फॉल्स, कौन झूठा है एंड हु इज़ लायर, तो कौन झूठा है और कौन लोग झूठे हैं और कौन लोग सच्चे हैं। इस आयत में एक बड़ा बारीक नुक्ता है और उसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ही कहता है कि पहली बात कि हम ये जो क्लेम करते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी अवेयरनेस हो कि क्या चीज़ है जो हम दावा करते हैं और क्या चीज़ एक्चुअली हमारे अंदर मौजूद है। मसलन हम में से सबसे अहम दावा जो हमारा है वो ये है कि हम मोमिन हैं, लेकिन क्या कुरान जिसको मोमिन कहता है हम वो मोमिन हैं या नहीं हैं। अल्लाह ताला कहता है तुम जो मर्ज़ी कहते रहो कि मुझसे बड़ा मुहिब अहले बैत कोई नहीं है, मुझसे बड़ा आज़ादार कोई नहीं है, मुझसे बड़ा मोमिन कोई नहीं है। अच्छा, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं रिस्पेक्ट करूँ। जब मैं आपको देखता हूँ आप कहते हैं जी मैं बहुत बड़ा मोमिन हूँ, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से मैं जी देखने को कहा गया है। अल्लाह ताला कहता है मैं इस दुनिया में तुम्हें टेस्ट करूँगा, मैं इस दुनिया में तुम्हारे झूठ को देखूँगा, तुम्हारे सच को देखूँगा। और अल्लाह ताला कहता है कि जो सिद्क और ट्रुथफुलनेस के जो आसार हैं वो इम्तिहान के ज़रिए तुम्हारे अमल में ज़ाहिर होंगे खुद ब खुद, और मेरा जो सवाब है जो जज़ा है वो हकीकी ईमान पर होगी, झूठे ईमान पर नहीं होगी। तो जो हकीकी ईमान अपने अंदर पैदा करना, इंशाल्लाह जब कभी मैं मजालिस पढ़ूंगा तफसील से कि एक मोमिन की सिफात क्या होती हैं और मोमिन का करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जो चीज़ अहम सीखते हैं कि जिसकी तरफ हमने कल भी बात की कि दुनिया जो है वो ज़ाहिर की हुकूमत है, यानी आपके अंदर क्या है, आपके जहन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आप अंदर से अच्छे इंसान हैं, आप अंदर से बुरे इंसान हैं, हमें इतने आराम से पता नहीं चलता। हमें आप हो सकता है कभी कभी इंसान बरसा बरस तक अपने आप को बहुत अच्छा साबित करते हैं और आप उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन वो अंदर से अच्छा नहीं होता, अंदर से वो खुद गरज होता है, अंदर से उसके अंदर कोई ना कोई अपने उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला जो है वो हमें ये कहता है कि ये दुनिया जाहिर की है, जो चीज़ यहाँ जाहिर है वहाँ इसका बातिन आश्कार हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका बहुत अहम नुक्ते की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ जो अखलाकी नुक्ता है, और वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जाहिर और बातिन को एक करने की कोशिश करें। जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, जो हकीकी मोमिन होते हैं, जो रूहानी और मानवी इंसान होता है, उसमें और आम इंसान में ये फ़र्क होता है कि उसके जाहिर और बातिन में इख्तलाफ होता है, जाहिर और बातिन में डिस्टेंस होता है, लेकिन जो मोमिन होता है उसके जाहिर और बातिन में बहुत कम इख्तलाफ होता है या होता ही नहीं है। जैसा वे अंदर से है वैसा ही वो बाहर से है। ये बहुत सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा। हमारी सारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करें। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ज़ात है, हमारी जो गुफ्तार है, जो हम जब बात करते हैं किसी से, तो जो इम्प्रेशन हम दूसरे को देते हैं उसमें क्लैरिटी का होना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी का होना ज़रूरी है। कितने लोग मैं देखता हूँ मुझे यही नहीं पता लगता कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो या नहीं, तुम मेरा साथ दे रहे हो या नहीं दे रहे, तुम किसकी तरफ हो, यही पता नहीं चलता लोगों के बारे में। यानी ये कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में क्यों होती हैं। हमारी ज़िंदगी में क्लैरिटी होनी चाहिए और दूसरों को कम से कम हम अपनी ज़ात की वजह से कन्फ्यूज करें। ये जो हम है ना, दूसरों को कन्फ्यूज करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारा जो स्टैंस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और ये वो दर्स है कि जो हम जो है वो इससे सीखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर और बातिन को जो है कम करने की कोशिश करें। कुरान मजीद की जिस आयत को मैंने आज सरनामा कलाम यानी शुरू में जिसको मैंने तलावत की, आजकल आपको पता है कि थोड़ी मुश्किल उर्दू बोलें तो बिल्कुल किसी को समझ नहीं आती, एक ज़माने में ये कहते हैं ना सरनामा कलाम करार दिया, तो वो मैं अब वो लफ्ज़ बोलता हूँ तो हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इसको समझना, बड़ी ये गाढ़ी उर्दू जो है वो हो जाती है। हमारे ख़ास तौर पर ही पाकिस्तानियों में एक प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाते। जो आप ईरानियों में ये नहीं है, अरबों में ये नहीं है, सिखों में ये नहीं है, वो बराबर की पंजाबी बोलते हैं, बराबर की इंग्लिश बोलते हैं। हमारी एक अगर मैं गलती पे ना हूँ तो हम एक कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं इंग्लिश की वजह से। तो हम जब आते हैं अमेरिका में, कनाडा में, तो जब हम देखते हैं वो हमारा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो हम पागल हो जाते हैं खुशी से, क्योंकि सारी उम्र का हमारा एक प्रॉब्लम है। सलवात पढ़ दीजिए एक मिनट। और ये बहुत बड़ी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के बारे में कि हम अपने इस कॉम्प्लेक्स से निकल कर, क्योंकि बच्चे ने इंग्लिश में वो पढ़ रहा है, इस माशरे में रह रहा है, उसकी इंग्लिश को कुछ नहीं होना, जो होना है उसकी अपनी लैंग्वेज को होना है, उसकी मदर लैंग्वेज को होना है। इसको बहुत ज़रूरी है इंपॉर्टेंस देना। और इसीलिए मैं आज देखता हूँ मेरे बच्चे जब आपस में बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कभी मैंने हमने अपने बच्चों से इंग्लिश नहीं बोली, और कभी मैंने एक लफ्ज़ की उर्दू के प्रोनंसिएशन में गलती नहीं होने दी उनमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक, देखें आपको तरबियत के लिए माँ बाप को मेहनत करनी पड़ती है, तवज्जो देनी पड़ती है। अगर हम इस तरह करें तो आज ये मुश्किल जो हमारी जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है जो बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हो चुकी है, और वो ये है कि उलमा को इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है, उर्दू भी बोलनी पड़ती है, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। और इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इसलिए कि आप एड्रेस कर रहे हैं किसी और को, फिर आप यूथ को भी करें, फिर आपसे कहते हैं बच्चों को भी एड्रेस करें, तो आप ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, आप अलग से भी एक लैंग्वेज नहीं रख सकते। तो प्रॉब्लम असल में क्या है, प्रॉब्लम यही है कि हम अपने बच्चों को ज़बान नहीं सिखाते, उर्दू नहीं सिखाते। मैं जब ईरानी फैमिली से मिलता हूँ उनके बच्चे फ्लूएंटली पर्शियन बोल रहे होते हैं, अरब फैमिली से मिलता हूँ फ्लूएंटली अरब बोल रहे होते हैं, जब अंग्रेज़ों से मिलते हैं फ्लूएंटली इंग्लिश बोल रहे होते हैं। एक बच्चे में इतनी सलाहियत होती है कि कम से कम वो 5 लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत आराम से सीख सकता है। लेकिन इसके बावजूद, लिहाजा मैं चाहता हूं कि हम इस मसले के ऊपर भी तवज्जो करें कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उसमें आपके बच्चों को उर्दू में आपकी जबान में परफेक्ट होना चाहिए। और जबान एक कीमती असासा होता है, सिर्फ जबान नहीं होती, उसके पीछे एक पूरा कल्चर मौजूद होता है। तो आप जब अपने बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं तो आप सिर्फ लैंग्वेज नहीं सिखाते हैं बल्कि उसको एक नए और पूरे अलग कल्चर से उसको आगाह करते हैं, उससे उसका माइंड जो है उसमें ब्रॉडनेस आती है, उसका वर्ल्ड व्यू दूसरा होता है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, वो माशरे में बेहतर तौर पर वर्क कर सकता है, वो क्राइसिस को बेहतर तौर पर एड्रेस कर सकता है। सलावत पढ़ दीजिए एक मर्तबा। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि इन्ना नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, कि हम जो मुर्दे हैं उनको जिंदा करेंगे क़यामत के दिन, और हम लिखेंगे मा कद्दमू कि जो चीज़ हम आगे भेज चुके हैं। ये है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ ये आयत इशारा कर रही है, और इसी की ज़ैल में मैं कुछ नुक्ते बयान करूँगा और इंशाल्लाह कल की मजलिस में उसको जारी रखूँगा। कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि एक हमारी ज़िंदगी है जब हम इस वक्त ज़िंदा हैं, और एक वो वक्त आएगा कि जब हम इस दुनिया से चले जाएँगे, और हम सबको इस दुनिया से जाना है। और मैं इससे पहले ये बात कर चुका हूँ कि एज अ मुस्लिम स्पिरिचुअल केयर प्रोफेशनल, पैलिएटिव केयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये डाइंग पेशेंट की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट दुनिया होती है। हम इस वक्त जब अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं समझते तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक डाइंग पेशेंट जो है वो किस तरह दुनिया को देखता है, उसकी वर्ल्ड व्यू क्या होता है। और अगर उसने अपने आप को पहले से तैयार ना किया हो, अगर उसने अपने आप को पहले से प्रिपेयर ना किया हो उस वक्त के लिए कि जब मरने का वक्त करीब आता है, तो उस वक्त वो शदीद क्राइसिस के अंदर होता है। वो उस क्राइसिस को सॉल्व ना करने की वजह से वो स्पिरिचुअल पेन का शिकार होता है। लिहाजा कुरान बार बार हमें उन प्रिंसिपल्स की तरफ इशारा करता है कि जिसके ज़रिए से हम उस लम्हात में हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, हम अपने आप को जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ये जो डाइंग पेशेंट्स हैं इनकी जो अप्रोच होती है, इनके जो वर्ल्ड व्यू होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं इसीलिए बाज़ जगह पर मैंने ये बात की है कि इंशाल्लाह जब मेरा मौजू होगा तो बड़ी तफसील से बात करूँगा। देखें, हमारी ज़िंदगी की स्टेजेस हैं। हम बच्चे थे, बच्चे के बाद जवान हुए, जवान होने के बाद हम एक अधेड़ उम्र में पहुँचे, इसके बाद हम बुढ़ापे में पहुँचेंगे। आप जब अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है, ये रिवायात में मौजूद है और बहुत ज़रूरी है ये कि हम उस स्टेज में पहुँचने से पहले अपने आप को उस स्टेज के लिए तैयार करें। यानी जब हमने 40 साल के एज में पहुंचना है तो 30 साल की उम्र में अपने आप को 40 साल के लिए तैयार करें, और जब हम 40 साल में हैं तो अपने आप को बुढ़ापे के लिए तैयार करें। क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है तो सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत तवज्जो कीजिएगा, सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना इंसान की पूरी ज़िंदगी की, वो वर्स्ट शक्ल में बुढ़ापे में सामने आती, इसलिए कि आप उनको पहले से कंट्रोल नहीं करते हैं, आप उन पर पहले से तवज्जो नहीं करते हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों की जो इंटरेक्शन है नौजवानों के साथ है, घर वालों के साथ है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर फ़र्ज़ करें आपने अपनी अच्छी उम्र में अपनी ज़बान पर काबू नहीं पाया, आपने सोच समझ के अखलाकियात पर तवज्जो नहीं दी, तो आप अभी जब आप बूढ़े नहीं हुए तो आप अभी थोड़ा बहुत फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़ात का ये मलका नहीं बना, ट्रेट ऑफ नफ्स नहीं बना, अगर आपने तरबियत ना की, तो बुढ़ापे में यही ज़बान आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, नामुमकिन है आपके लिए। तो ये जो हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड के अंदर ये है ना कि आपके पास जो है वो पहले से अपने आप को जो है वो तैयार करना, मेडिकल उसके जो भी हालात हैं उसके लिए आप किस तरीके से आप करते हैं, तो इसी तरीके से स्पिरिचुअल केयर के हवाले से भी आपको पहले से अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कुरान ये कहता है कि जब आप ज़िंदा हैं तो हम आपके अमल को लिखते हैं कि आप आगे क्या भेज रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो ज़ाहरी तौर पर दुनियावी काम हो, चाहे वो उखरवी काम हो, देखें दुनियावी काम कोई नहीं होता, उखरवी काम वही काम जो दुनियावी है, अगर उसमें आपका उसमें डिवाइन कलर है, अगर उसमें डिवाइन डायरेक्शन है, अगर आपका उसके अंदर जो मकसद है वो मेटीरियलिस्टिक नहीं है, तो वही काम आपका उखरवी हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम जो काम भी करते हैं, जो अमल भी करते हैं, हालांकि वो चाहे खालिसतन दुनिया का हो, हम जब तक उसको डिवाइन कलर नहीं देते, डिवाइन डायरेक्शन नहीं देते, जब तक उसको, जैसा कि हमने बात की थी कि कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजहहू, जब तक हम उसको अल्लाह की ज़ात से कनेक्ट नहीं करते, उस वक्त तक जो है वो बाकी रहने के काबिल नहीं होगा। तो कुरान ये कहता है कि अपने अमल को बाकी रखने के काबिल करो और इसके बाद तुम उसको आगे भेजो, ऐसा ना हो कि वो अमल जो है तुम्हारा यहीं ज़ाया हो जाए। बहुत सा काम ऐसा है जो दीनी काम है, जो इस्लामी काम है, और हम हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च करते हैं, डॉलर उस पर खर्च करते हैं, लेकिन क़यामत के दिन हमें पता चलेगा कि वो सारा का सारा हमारा अमल ज़ाया हो गया, इसलिए कि उसमें तकवा नहीं है, इसलिए कि उसमें खलूस नहीं है, इसलिए कि उसमें इखलास नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला कुरान मजीद की इस आयत में कहता है कि मा कद्दमू, तुम देखो कि तुम आगे क्या भेज रहे हो, क्या ये आगे तुम्हारी मदद करने वाला है, ये काम ये तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। और फिर कुरान मजीद ये कहता है कि वह आसारा हूं, अब मरने के बाद, अब देखिए कुरान क्या कह रहा है कि अब मरने के बाद क्या होगा, मरने, जब तक आप जिंदा हैं अपने एक एक अमल के ऊपर फोकस करें, और एक आप देखना, एक तो ये कि आप इमेजिन कर रहे हैं अपने तौर पर, आपकी इमेजिनेशन है, मैं जो भी कर रहा हूं माशाल्लाह इससे अच्छा काम ही कोई नहीं हो सकता, मेरा बेहतरीन अमल है और सब कुछ ये वो। एक ये है कि इंसान रियलिस्टिकली उसको देखे कि वाकई मेरा अमल जो है वो खलूस के मुताबिक है, उसमें इखलास है या नहीं है। तो ये अमल आप आगे भेज रहे हैं तो ये आपके काम आएगा। قرآن اس کے اوپر غور جو ہے وہ توجہ کرتا ہے. اور اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ مختلف جگہ روایات میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے کام آئیں گی. ایک تو آپ جب زندہ ہیں تو آپ اپنے فرزند کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے. اگر وہ فرزند آپ کے لیے دعا کرتا ہے, اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کے لیے کام آئے گا. یہ وہ چیز ہے جو آپ آگے بھیج رہے ہیں, آپ اس کو آگے بھیج رہے ہیں. حالانکہ بیٹا آپ کا یہی ہے, اولاد آپ کی یہی ہے, لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی اس کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی کتاب لکھی, آپ کی رائٹنگز ایسی ہیں جس سے آنے والی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں. اور تیسرا صدقہ جاریہ, کہ جو صدقہ جاریہ جس سے آنے والی دنیا جو ہے وہ استفادہ کرتی ہے, اس سے بہرہ مند ہوتی ہے. تو یہ وہ سارے کام ہیں کہ اگر آپ, یہ تو صرف مثالیں ہیں, اور بھی ہزاروں مثالیں موجود ہیں, تو اگر آپ اپنے کام پر توجہ کریں کہ آپ کیا چیز آگے بھیج رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ آسارا ہوں, اب آپ اس دنیا سے چلے گئے. اب جب دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دو چیزیں اب امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اس عمل کا جو اثر ہے, آپ کے عمل کا جو اثر ہے, وہ اثر آپ کا آپ تک جو ہے وہ پہنچے گا, یعنی اس کے آثار آپ تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. یعنی اس معنی میں کہ آپ جس وقت کوئی عمل انجام دیتے ہیں, جو کچھ بھی آپ, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ بھی آپ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کو لوگ یوز کیسے کر رہے ہیں. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے جو فرض کریں, بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جائیداد ایسے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے اس سے پھر عیاشی میں اس کو خرچ کرتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کے آثار بھی اللہ تعالیٰ کنسیڈر کرے گا. صرف وہ عمل کنسیڈر نہیں کرے گا, بلکہ اس کے آثار کو بھی کنسیڈر کرے گا. کہ ایک تو یہ کہ اس کو کیسے لوگ یوز کر رہے ہیں, دوسرا یہ کہ اگر آپ نے نیک کام کیا, تو صرف نیک کام نہیں کیا آپ نے, بلکہ اس کے جو آگے آثار ہیں, جو انسانیت کو آپ کے نیک عمل سے فائدہ پہنچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے لیے کنسیڈر کر رہا ہے. اگر آپ نے کوئی برا کام کیا, تو صرف اللہ تعالیٰ صرف اس برے کام پر آپ کو عذاب نہیں دے گا, بلکہ اس برے کام کے نتیجے میں آپ نے جس کو برا بنایا ہے, آپ نے جس کو نقصان پہنچایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی کنسیڈر کرے گا. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ, میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیریسنیس ختم ہوتی جا رہی. یہ ایک جو ہمارے ہاں نقصان ہوا ہے, جو ہمارے ہاں سٹائل چل رہا ہے, اس کی وجہ سے مذہب کو سیکھنے کے لیے جو سیریسنیس ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. انٹرٹینمنٹ, فن اور اس طرح کی چیزوں کی طرف ہم زیادہ چلے گئے ہیں. لیکن قرآن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے. قرآن بہت سیریس طریقے سے چیزوں کو ٹیک اپ کرتا ہے, اور ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بھی بہت اچھی ہے, فن بھی بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ, لیکن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ اس دنیا کو میں نے جو تمہارے لیے تفریح فراہم کی ہے, جو انٹرٹینمنٹ فراہم کی ہے, یہ صرف چند لمحے کے لیے انسان اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے ہے. بالکل توجہ کیجئے گا, بالکل اسی طرح جیسے اسکول میں ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, بریک کا ٹائم آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کا ہوتا ہے, وہ بریک کا ٹائم کا فلسفہ کیا ہے؟ اس میں یہ کہ آپ نے اتنا پڑھا, آپ آئے, آپ تھوڑا سا تھک گئے, تھوڑا سا آپ جو ہے ریلیکس کر لیں, تھوڑا سا آپ تفریح کر لیں, لیکن آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ دوبارہ واپس اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں. تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا جو ہے یہ اسی ایک مدرسے اور اسکول کی ریسیس کی مانند ہے, یعنی اس بریک کی مانند ہے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو بہت ضروری ہے ہم اس کو, کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ ہم اس چیز کو, فن, انٹرٹینمنٹ, سب چیزیں اچھی ہیں, لیکن اگر وہ ہمارے اصل ہدف کو افیکٹ کرے, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस पर सीरियसली सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं, जो हम असल मकसद है, मैं स्कूल गया हूँ और मैं ब्रेक से मैं कहीं भाग गया, ऐसे भी होते थे किसी ज़माने में बच्चे कि वो जो है वो ब्रेक के बाद जाते ही नहीं थे अपनी क्लासों में। तो हमारी मिसाल ऐसी ही है कि हम जो है वो ब्रेक होती है और ब्रेक के बाद हम भाग जाते हैं। और फिर आपको मालूम है आपके ज़माने के बहुत से बच्चे ऐसे कि बाद में हमें ये पता चलता है कि ये वही साहब हैं जो ब्रेक में भाग जाया करते थे और आज जो है एक बदतरीन इंसान की हैसियत से सोसाइटी में मूव कर रहे हैं। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह ताला हमारे अमल को देखता है, उस अमल के असर को देखता है। अब एक चीज़ और जो हमारे यहाँ हो गई है, मैं जो ये क्यों लाया था ये नुक्ता कि सीरियसनेस नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। हम इस वक्त दौर है सोशल मीडिया का, अब सोशल मीडिया है हमारे पास, फेसबुक है हमारे पास, यूट्यूब है, हम एक दूसरे से चैट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो है वो टेक्स्टिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब वो बात से बात निकली चली जाती है, वो फिर मैं वापस मुझे आना पड़ता है उसकी तरफ कि हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग जो हैं वो इस दुनिया में डिटैच्ड हो चुके हैं। हम हमारी जो एक दूसरे से अटैचमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हम बिल्कुल एक मशीनी ज़िंदगी हमारी शुरू हो गई। अगर हमारी इस पर तवज्जो होगी तो हम इसको वाकई एड्रेस कर सकते हैं, अगर हमारी इस पर तवज्जो नहीं होगी तो इसके ऊपर आज वो जो इमोशंस होते थे वो इमोशंस ख़त्म होते चले जा रहे हैं। अब मैं देखता हूँ मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, अब हर मिनट बाद जो है फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, आज विलादत है तो फॉरवर्ड हो रही है। आप यकीन करें कि मैं कभी किसी ऑलरेडी किसी पोस्ट को कभी कभी फॉरवर्ड नहीं करता। उसकी क्या वजह है? इसलिए फॉरवर्ड नहीं करता कि मैं चाहता हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग का रिलेशनशिप, मैं चाहता हूँ एक इमोशनल रिलेशनशिप हो। मैं हर शख्स को पर्सनली एड्रेस करता हूँ, मैं हर शख्स को पर्सनली उसका नाम लिखकर उसको ग्रीटिंग्स करता हूँ और उसको, और अगर ये जो हम इधर से आया इधर फॉरवर्ड, इधर से आया इधर फॉरवर्ड, एक भरमार हमारे यहाँ हो रही है। इसकी वजह ये है, इसके नतीजे में हम इस कायनात से, हम अफराद से और हम नेचर के साथ डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ये जो नेचर है, ये जो तबीयत है जिससे हमें लुत्फंदोज़ होना चाहिए, आज हमारे यंगस्टर, आज हमारे नौजवान गाड़ी में भी बैठते हैं तो वहाँ पर भी सेल फोन होता है, गाड़ी में भी बैठते हैं तो वहाँ पर भी मूवी देख रहे होते हैं। मुझे याद है एक हमारा ज़माना था कि हम नेचर से इंजॉय करते थे, हम ग्रीनरी से इंजॉय करते थे, लेकिन आज हमारी सारी इंजॉयमेंट जो है यही सेल फोन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ों को सीरियस तरीके से जो है हम एड्रेस करें। और हम फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो माँ बैठी है, बाप बैठा है, भाई बैठे हैं, सब अपने सेलफोन पे लगे हुए, तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही ख़त्म हो गया बिल्कुल। और इसी वजह है कि हमारे इमोशंस भी ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारी जज्बाती वाबस्तगी, सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा, तो शुक्रिया, हमारी जो ज़ाती जो हमारी मोहब्बत है, जो उल्फत है, ये सरीहन कुरान की आयात और अहदीस और रिवायात और रूह दीन के ख़िलाफ़ है जो हमारे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बाहर जाते हैं फैमिली को लेके, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए, कुछ देर के लिए हमें सेल फोन्स, बल्कि मैं खबर पढ़ रहा था कि एक रेस्टोरेंट है अमेरिका में या कहाँ पे है कि वहाँ उन्होंने पाबंदी लगाई है कि आप सेल फोन लेके नहीं जा सकते, जब आप खाना खाने के लिए जाएंगे तो सेल फोन जमा कराने पड़ेंगे। लेकिन उनका फ़लसफ़ा क्या है, ये बड़ा दिलचस्प है, फ़लसफ़ा ये है, उन्होंने कहा अगर आप सेल फोन लेके जाएंगे तो आपको हमारे खाने का टेस्ट पता नहीं चलेगा। तो आपको ये कैसे पता चलेगा हमारा खाना कितना मज़ेदार है? तो अब आप देखेंगे ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो इंशाल्लाह मैंने जो बातें की हैं उस पर इंशाल्लाह गौर करेंगे और उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है फैमिलीज़ को कि किस तरह से इस क्राइसिस से अपने आप को जो है हम निकालें और हम एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो गए। जो आखिरी बात मैं करना चाहता था वो यही बात थी कि आसार इम्पॉर्टेंट है, सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का, ये थी जो मैं बात करना चाहता था जहाँ से मैं उस तरफ निकल गया, सोशल मीडिया और फेसबुक का दौर है। आप जब एक अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा मैसेज देते हैं, आप उसके ज़रिए से लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं तो उस असर का भी आपको फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला कहता है मैं उस आसार को भी लिख रहा हूँ, सिर्फ अमल को नहीं लिख रहा, उसके इफ़ेक्ट्स को भी लिख रहा हूँ। और ऐसे लोग कि जो अपने मैसेजेस के ज़रिए से खानदानों के खानदानों को तबाह कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक मैसेज लिखते हैं जिससे सिले रहमी खत्म हो जाती है, जिससे भाई बहन का दुश्मन हो जाता है, जिससे खानदानों में लड़ाइयां हो जाती हैं, आपके एक छोटे से मैसेज। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कुरान की इस आयत पर अमल ना करना। अगर हमें यह पता चले कि मेरा अमल जो मैं आगे भेज रहा हूं, मैं कुछ देर के लिए रुकूं और सोचूं उसके ऊपर, और जो अमल मैं कर रहा हूं कुछ देर के लिए रुकूं और सोचूं और उसके असर पर गौर करूं। ये जो आज के दौर में हमसे अक्लो फिक्र और तफक्कुर की ताकत छीन ली है, उसके नतीजे में सब कुछ जो है वो हो रहा है। सलावत पढ़ दीजिए एक मर्तबा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप हजरात की तौफीकात में इजाफा फरमाए और हमें कुरान की आयात की जो मैसेजेस हैं हम उनको समझने की कोशिश करें, और तालीमात अहले बैत की रोशनी में हम अपने आप को अखलाकी लिहाज से अपनी तरबियत कर सकें। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर इसी जगह से इंशाल्लाह गुफ्तगू को शुरू करूँगा। बहुत अहम इशूज़ हैं जो इंशाल्लाह मैंने आने वाली मजालिस में आप हज़रात की खिदमत में रखने हैं। करबला के मैदान में जब हम एक चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर दो काम साथ साथ होते नज़र आते हैं करबला के अंदर। एक तो ये कि एक वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने ख़ुद आगे बढ़कर कुर्बानियाँ पेश की, जिन्होंने ख़ुद आगे बढ़कर अपने खून का नजराना पेश किया, वो हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ख़ुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन कुछ वो हस्तियाँ हैं कि जो करबला में ना जा सकें लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बानी के लिए पेश किया। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि आप ख़ुद नहीं जा रहे लेकिन आप अपने बच्चों को कुर्बानी के लिए पेश कर रहे हैं। तारीख़ ये बताती है कि उम्मुल बनीन ने अपने बच्चों को जब भेजा तो कहा कि देखो जब कभी मौला पर वक्त आए तो अपने आप को कुर्बान कर देना और मुझे शर्मिंदा ना करना। इसी तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे मैं करबला में नहीं हूँगा, लेकिन बेटे को वसीयत की कि जब कभी चचा पर बुरा वक्त आए तो उनको अकेला और तन्हा न छोड़ना। इसी तरीके से आज हम जिक्र करते हैं उन दो बच्चों का, औन मोहम्मद का कि अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से चलने लगते हैं, आप इमाम से मिलते हैं, कहते हैं कि मौला मैं अपनी इस बीमारी की वजह से, इस मुश्किल की वजह से अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो मैं इन दोनों बच्चों की कुर्बानी जो है वो मैं पेश करता हूँ, इन दोनों बच्चों को मैं आपके साथ करता हूँ और इनकी कुर्बानी जो है मैं पेश करता हूँ। तो आप देखें कि करबला में, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम विजुअलाइज भी करें कि करबला में आप खुद सोचें कि अगर हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो कि या हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े या हमारे बच्चों की देनी पड़े तो हम बच्चों पर अपने आप को कुर्बान कर देंगे। हम बिल्कुल इसके तैयार नहीं हैं कि हमारे सामने हमारे बच्चों को कत्ल किया जाए। लेकिन करबला में वो कौन से हालात थे कि आप देखें कि किस तरह से माओ ने और दोनों दो लोगों ने किस तरह अपने बच्चों की कुर्बानी पेश की। यानी हालात का कितना सख्त है कि आप अपने बच्चों को कुर्बान करें। बस अज़ादारों, तारीख़ ये बताती है, अरबाब मकातिल ये लिखते हैं कि जब शब आशूर होती है तो शब आशूर सैयदा ज़ैनब, शहज़ादी ज़ैनब बेचैन हैं कि भाई हुसैन जो हैं वो आखिरी मरतबा मुज़ाकरात के लिए गए हैं। शहज़ादी ज़ैनब को ये पता नहीं है कि जंग होगी या नहीं होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो शहज़ादी ज़ैनब ने तड़प कर पूछा कि भैया क्या ख़बर लेकर आए हैं, क्या कल जंग होगी या नहीं होगी। कहा कि बहन ज़ैनब कल जंग होगी और सुलह का कोई अब इम्कान, तमाम दरवाज़े बंद हो चुके हैं। बस अज़ादारों, इमाम हुसैन का ये कहना था कि तमाम बीबियों ने अपने बच्चों को कल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। शहज़ादी ज़ैनब ने अपने बच्चों को बुलाया और मोहम्मद को बुलाया, उन्हें कल के लिए, अगले दिन के लिए तैयार किया और कहा कि बच्चों तुम्हें याद तो है कि तुम जाफ़र तैयार के पोते हो, बच्चों तुम्हें याद तो है तुम अली इब्ने अबी तालिब के नवासे हो, तुम्हें याद तो है तुम्हारे दादा का जहाद कैसा था, तुम्हारे नाना का जहाद कैसा था। बच्चों कल जब मैदान जंग में तलवारों की चमक होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम खौफ में मुब्तला हो जाओ। बच्चों देखो, तुम मेरी लाज रख लेना, तुम मेरी जो है मुझे शर्मिंदा ना करना, तुम ये बताना कि तुम जाफर तैयार के पोते हो। आप देखें, सिर्फ बच्चों की कुर्बानी नहीं है बल्कि बच्चों को कुर्बानी देने के लिए तैयार करना भी हमें करबला के अंदर जो है वो नज़र आता है। अज़ादारो तारीख ये बताती है कि जब रोज़े आशूर आता है तो फिर एक मरतबा बार बार ये बच्चे अपने मामू के पास जाते हैं, कहते हैं मामू जान हमें जिहाद के लिए इजाज़त दीजिए। हुसैन की आंखों में आंसू हैं। आप ज़रा सोचें, हुसैन के लिए कैसे मुमकिन है कि ओन मोहम्मद को जिहाद के लिए इजाज़त दे दें। जब शहजादी ज़ैनब ने देखा कि बच्चों को इजाज़त नहीं मिल रही है तो एक मरतबा तड़प कर करीब आईं और दीवार से खड़ी हो गईं। हुसैन ने पूछा, बहन ज़ैनब क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? कहा कि भैया मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ज़ैनब ने आपसे कभी कोई मुतालबा किया है? क्या ज़ैनब ने आपसे कभी कोई तकाजा किया है? भैया आज ज़ैनब आपसे ये तकाजा करती है कि मेरे बच्चों को मैदान जहाद में जाने की इजाज़त दीजिए। अज़दारो, खुदा आपको सिवाय गम हुसैन के किसी गम में न रुलाए। अज़दारो, फिर वक्त आया, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कोई ऐसा जो है मौका नहीं था, आपको इजाज़त देना पड़ी। जब आपने बच्चों को मैदान जिहाद में जाने की इजाज़त दी तो एक दफ़ा ज़ैनब ने अपने बच्चों को फिर बुलाया, कहा कि बच्चों तुम मैदान में जा रहे हो, जिहाद के लिए जा रहे हो, देखो मुझे शर्मिंदा ना करना, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर लड़ते लड़ते तुम दरियाए फुरात के किनारे पहुँच जाओ तो तुम पानी की तरफ रुख करके ना देखना, इसलिए कि खैमे में तुम्हारा भाई अली असगर प्यासा है, अभी सकीना प्यासी है, अभी अल अतश की आवाज आ रही है। बस अज़दारो, बच्चों का मैदान में जाना था, बहादुरी के साथ लड़ना था, अपना तारुफ करवाया, सफों की सफे पलट दी, लेकिन ये मासूम बच्चे कब तक लड़ते रहते, जख्मों से चूर हुए, मैदान करबला में गिरना था, आवाज दी, मौला हमारी मदद को आई है। उधर हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अज़दारो, हुसैन अब्बास के साथ बच्चे की लाश लेकर आए, एक लाश अब्बास ने उठाई और दरे खैमा पर रख दिया। फिजा ने जाकर एक मर्तबा माँ को कहा कि ऐ ज़ैनब बच्चे आ गए हैं। ये सुनना था कि ज़ैनब ने तड़प कर कहा, अरे मैंने बच्चों को वापस आने के लिए कब भेजा था? कहा कि ज़ैनब जाकर देखो तो सही कि बच्चे किस तरीके से आए हैं। अब जो ज़ैनब खैमे से बाहर आई तो बच्चों की लाशों को देखा और एक मर्तबा सजदा किया, और सजदा शुक्र बजा लाने के बाद मैं ये कहूंगा कि शहजादी ज़ैनब, हमें तारीख में ये भी मिलता है कि आपने अपने बच्चों को देखा तक नहीं, खैमे से बाहर भी ना आई, लेकिन मैं पूछूंगा कि ऐ ज़ैनब शहजादी क्या बात थी जब अली अकबर की लाश खैमे में आई तो आप तड़प कर निकली और खुद को अली अकबर की लाश पर गिरा दिया। अला लअनतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسين